दरवाजा खुला। जीवन, विक्रांत का भरोसेमंद असिस्टेंट, तेज कदमों से अंदर आया। सर, उसकी आवाज में हड़बड़ी थी। विक्रांत तुरंत रुका। क्या हुआ? आर्यन ने, जीवन ने शब्द चुने, कंपनी में आपने जितने भी कर्मचारी रखे थे सबको निकाल दिया है, एक एक को। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला, फिर हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आई, वो हंसी जो अक्सर तूफान से पहले आती है। तो आखिर उसने शुरू कर ही दिया, वो धीमे स्वर में बोला। जीवन ने सिर हिलाया। हाँ सर, खासकर ट्रकों वाले, ड्राइवर, सुपरवाइजर सब। विक्रांत सोफे पर बैठ गया। उंगलियां आपस में फंसाकर वो सोचने लगा। इसका मतलब है, वो खुद से बोलता सा बोला, वो हमारी जड़ तक पहुंचना चाहता है। फिर अचानक उसने सिर उठाया। सब पर नजर रखो, उसने आदेश दिया, और खास तौर पर उस आदमी पर। जीवन समझ गया। आप उसी की बात कर रहे हैं ना सर? विक्रांत की आंखें संखड़ी हो गईं। हाँ, उसने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अगर जरा सा भी सुराग बाहर आया तो नाम हमारा ही आएगा। उसने मुट्ठी भींच ली। आर्यन बहुत साफ बनने की कोशिश कर रहा है, और यही सबसे खतरनाक बात है। जीवन ने तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा, कोई भी ढीला सिरा बाहर नहीं जाएगा। विक्रांत ने गहरी सांस ली। याद रखना जीवन, अगर एक भी गलती हुई तो कीमत बहुत भारी होगी। उसी वक्त कमरे के दूसरे कोने में खड़ी जैसिका ये सारी बातचीत सुन चुकी थी। वो चुपचाप खड़ी रही, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। तो आर्यन सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो खोद रहा है, उसने मन ही मन सोचा। और जब कोई ज्यादा खोदता है ना, तो अक्सर खुद ही किसी गड्ढे के किनारे आ खड़ा होता है। जैसिका ने बिना कुछ कहे मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर कई नाम चमके, लेकिन उसने किसी को कॉल नहीं किया, अभी नहीं, क्योंकि अब खेल सिर्फ नौकरी निकालने का नहीं था। अब सवाल था, किसका सच पहले बाहर आएगा और कौन उसे दबाने में कामयाब होगा। सानवी भारी कदमों से इंद्र के घर के दरवाजे तक पहुंची। दिल में घबराहट भी थी, अपराध बोध भी, और एक डर भी कि कृति उससे बात करेगी या नहीं। दरवाजा खुला, कृति सामने खड़ी थी। चेहरे पर थकान थी और आंखों में गुस्सा। कृति, सानवी ने धीरे से कहा, लेकिन जवाब में कृति ने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर अंदर चली गई। सानवी भी चुपचाप अंदर आ गई। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था, इंद्र घर पर नहीं था। सानवी ने हिम्मत करके कहा, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूं, तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, क्यों? कृति ने पलटकर देखा, आवाज में साफ नाराजगी थी। क्योंकि मैं गुस्से में हूं, इसलिए नहीं उठाया। सानवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर टूटे हुए लहजे में बोली, मैं माफी मांगती हूं कृति। कृति ने तीखी नजर से देखा, किस बात की माफी? सानवी की आवाज भारी हो गई। जब इंद्र ने कहा था कि उसे हमारी फेक मैरिज के बारे में पता था, तो मुझे लगा तुमने बताया होगा। मैंने बिना पूछे बिना समझे तुम्हें दोष दे दिया, इसलिए तुम पर गुस्सा हो गई थी, माफ कर दो मुझे। कुछ पल तक कृति चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। माफी? उसकी आवाज कांपने लगी। माफी दीदी, आप नहीं, आपके हस्बैंड को माफी मांगनी चाहिए। सानवी चौंक गई। आर्यन? कृति की आंखें भर आईं। हाँ, आर्यन राजवंश, वो फूट पड़ी। उन्होंने मुझे कितना कुछ कहा, बिना मेरी बात सुने, बिना सच जाने। उसकी आवाज ऊंची होती चली गई। आप दोनों ने मुझे कितना कुछ सुनाया दीदी, एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। कृति, क्या मैं इंसान नहीं हूं? कृति लगभग चिल्ला पड़ी। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सानवी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन कृति ने हाथ पीछे खींच लिया। सानवी भारी दिल से बोली, देखो तुम घर चलो, रिया वहां अकेली है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम वहां रहोगी तो अच्छा रहेगा। कृति में सीधा जवाब दिया। नहीं, सानवी ने हैरानी से देखा। कृति, जब तक तुम्हारा पति आर्यन राजवंश मुझसे माफी नहीं मांगेगा, कृति ने साफ और सख्त लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सानवी ने उसे समझाने की कोशिश की, कृति प्लीज हालात समझो। नहीं, कृति का जवाब सीधा था, मैंने कोई गलती नहीं की तो झुकूं भी नहीं। कृति जिद नहीं कर रही, वो अपनी इज्जत के लिए खड़ी है। कमरे में दो बहनें आमने सामने थीं, एक रिश्तों को बचाना चाहती थी, दूसरी खुद को, और सच ये था दोनों ही गलत नहीं थीं। सब कुछ समा गया था, वेदांत अगली सुबह चला गया था। आज कई दिन हो चुके थे मगर वो वापस नहीं आया। रीना को लगने लगा था कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, शायद इसलिए क्योंकि उसने मना कर दिया था और इसी वजह से वो चला गया। वो अपने फ्लैट पर भी नहीं था। रीना का मन जोर जोर से रोने का कर रहा था, वो सच में बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसे वेदांत पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी जरूरत भी महसूस हो रही थी। वो अपनी कही हुई बातें और बीता हुआ सब कुछ भूल नहीं पा रही थी, मगर वेदांत से वो कितना प्यार करती थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए था, हाँ कह देना चाहिए था, मगर इस आदमी का क्या भरोसा, कौन जाने वो क्या सोचता है, इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रीना उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने जो था उसे देखकर वो हैरान रह गई। सामने वेदांत खड़ा था, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी माँ और छोटा भाई दीपक था। उनके पीछे उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। वेद की पत्नी मानवी, सुधीर, सुधांशु, रुचिका, बलवंत, मेहरा और वेदिका, यानी उसकी पूरी फैमिली वहीं खड़ी थी। हम लोग अंदर आ जाएं, वेदांत ने कहा। मगर इससे पहले कि रीना कुछ बोल पाती, वेद ने वेदांत को जोर से धक्का दे दिया। वो आगे बढ़कर रीना से टकरा गया। अगर लड़की नहीं मानेगी तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे, वेद ने मुस्कुराकर कहा। इतने में पूरी फैमिली घर के अंदर आ चुकी थी। चलो भाई, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं, किसी ने कहा। सबसे पीछे बलवंत मेहरा और वेदिका आए थे। बलवंत मेहरा आगे बढ़े। रीना हक्की बक्की और परेशान खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। बेटा, अब तुम अकेली हो, इसलिए हम तुमसे ही तुम्हें मांगने आए हैं, वेदिका ने आगे बढ़ते हुए कहा। हमारे बेटे की बीवी बनोगी? आप लोग मुझसे आराम से बात कर सकते हैं, बलवंत मेहरा ने कहा और रीना के कंधे पर हाथ रख दिया। रीना ने उनकी ओर देखा। चलो बेटा, बैठो यहाँ, कहते हुए बलवंत मेहरा रीना को लेकर सोफे पर बैठ गए। अच्छा, तो तुम लोग लड़के वाले हो, बलवंत मेहरा बोले। हमारी बेटी लाखों में एक है, ऐसे ही हम अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को नहीं दे सकते। सही कहा ना बेटा? रीना परेशान बैठी थी, जवाब नहीं दे पा रही थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। तो फिर बताइए, सामने बैठे ब्रजेश मेहरा ने कहा, आप किस तरह से मानेंगे? हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद है। आपका बेटा काम क्या करता है? बलवंत मेहरा ने पूछा। बिजनेस, उन्होंने जवाब दिया। पहले इंडिया में था, अब प्रदेश जा रहा है वहाँ का बिजनेस देखने। हम चाहते हैं कि इसके साथ कोई समझदार सयानी लड़की हो जो इसे काबू में रख सके, इसीलिए हमें आपकी बेटी पसंद आई। बोलो बेटा, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? बलवंत मेहरा ने रीना से पूछा। अगर तुम हाँ करोगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। रीना के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, मगर वो सच भी जानती थी, उसे वेदांत चाहिए था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। देखो, बलवंत मेहरा बोले, मेरी बेटी को आपका बेटा पसंद है, मगर ऐसे ही हम अपनी बेटी नहीं देंगे, हम जानते हैं, रूप बोली और खड़ी हो गई। उसके हाथ में कुछ था। जी, ये आपकी बेटी के लिए है, इसे गलत मत समझिए, ये आपकी बेटी की सिक्योरिटी है, उसने कागज आगे बढ़ाए। बलवंत मेहरा उन्हें लेकर देखने लगे। बेटा देखो क्या है, उन्होंने कहा, जिस प्रदेश में तुम लोग रहोगे वो घर तुम्हारे नाम होगा, और वेदांत के नाम जो शेयर्स हैं शादी के बाद वे आधे तुम्हारे नाम कर दिए जाएंगे। मगर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, रीना ने कहा। हम जानते हैं बेटा, बलवंत मेहरा बोले, लेकिन बेटी की सिक्योरिटी हर बाप चाहता है, और अब मुझे भी तुम्हारी सिक्योरिटी चाहिए। थोड़ी देर बाद फैसला हो गया, सब लोग रीना का अपने साथ लेकर चले गए। ये तय किया गया कि
अगले दिन कोर्ट में वेदांत और रीना की शादी कर दी जाएगी। वेदांत कितना खुश था ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। जब रीना दूसरी गाड़ी में बैठने लगी तो वेदांत ने तुरंत कहा, रीना मेरे साथ जाएगी। मगर वेद ने मना कर दिया, ऐसे नहीं, कल शादी के बाद वो तुम्हारे साथ जाएगी, अभी तो वो हमारे ही साथ जाएगी। सही कहा ना मैंने?